एक नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि 2038 तक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की घटनाओं से वार्षिक नुकसान 100 बिलियन से भी अधिक हो सकता है। 2019 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के भयावह ब्लैक समर बुश फायर सीजन की डरावनी छवियां अभी भी अधिकांश ऑस्ट्रेलियन लोगों के दिमाग में ताज़ा हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में सूखे और बड़े पैमाने पर विरंजन घटनाओं का इतिहास बताता है कि देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति कितना संवेदनशील है। कहा गया है कि 2100 तक दुनिया भर में अत्यधिक गर्मी से होने वाली वार्षिक मौतों की संख्या 2020 में दर्ज सभी कोरोना वायरस मौतों की संख्या को पार कर जाएगी। ये गैर लाभकारी संगठन जलवायु परिषद द्वारा एक नई रिपोर्ट के अनुसार की गई भविष्यवाणी है। क्लाइमेट काउंसिल की रिपोर्ट का नाम है हिटिंग होम द कंपाउंडिंग कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इनएक्शन। इसके प्रमुख लेखक प्रोफेसर बिल स्टेफन कहते हैं कि आने वाले वर्षों में आपदाएं जलवायु के प्रति ये वर्षों की निष्क्रियता को दर्शाएंगी।
When you look at what's already locked in to the climate system from past inaction up to 2020, we will experience increasing temperatures, worsening extreme weather for at least a decade or two.
ऑस्ट्रेलिया में चरम मौसम की लागत 1970 के दशक से दुगनी हो गई है और पिछले एक दशक में ये 35 बिलियन डॉलर रही। और रिपोर्ट्स के लेखकों का अनुमान है कि 2038 तक इस चरम मौसम से वार्षिक नुकसान 100 बिलियन से अधिक हो सकता है। आपदा जोखिम में कमी यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व अधिकारी डॉक्टर रॉबर्ट ग्लासर का कहना है कि जलवायु परिषद की रिपोर्ट से तत्काल सरकारी कार्यवाही का संकेत दिया जाना चाहिए।
Australians live in areas that are exposed to severe extreme cyclone risk and bushfire risk, similarly huge exposure. So our internal exposure to hazards is key, but also we live in a region that is going to be disproportionately affected by climate change. Their problems, food insecurity, displaced populations, all of those things will lead to political instability that will very rapidly undermine our national security.
परिषद यानी काउंसिल का कहना है कि सरकार अपने कार्बन पदचिन्ह को कम करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रही है। प्रोफेसर स्टीफन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करना होगा और 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना होगा।
Our target of 26-28% emission reduction by 2030 is far, far too weak to make any difference to the climate system. We sit here proposing to keep coal going for another several decades, proposing to expand the gas industry. That's throwing our children under the bus. That's all it is. It's going to bring a disastrous result.
Treasurer Josh Frydenberg ka kehna hai ki Australia vartaman lakshyon ke saath chal raha hai.
Well, climate change is real, and that's why the Morrison government is focused on reducing Australia's carbon footprint. And based on current estimates, Australia will beat its 2030 targets by more than 400 million tons.
Professor Stephen कहते हैं कि COVID-19 recovery में Australia की बिजली प्रणाली को एक अक्षय प्रणाली में यानी renewable system में बदलना, स्वच्छ हाइड्रोजन में निवेश और विद्युतीकरण परिवहन को एक आर्थिक रूप से कुशल तरीके से पाया जा सकता है। वो कहते हैं कि फेडरल सरकार द्वारा प्रस्तावित एक गैस लेड रिकवरी समस्याग्रस्त है। ये इस समय है जब कुछ नेशनल सांसद ऑस्ट्रेलिया में बनने वाले नए कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं। नेशनल सेनेटर मैट कॉनविन का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स के हंटर वैली में एक नया कोयला संयंत्र के प्रस्तावित निर्माण से क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। कहा जा रहा है कि अगले 15 सालों में 8 लाख नौकरियों की बात आएगी। लेकिन श्री फ्राइडनबर्ग कहते हैं कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।
We have no plans to pay for, build a new coal. Mine or a new coal-fired power station in Australia. These will be commercial decisions, and I've spoken to the Energy Minister, and as he's pointed out, and as I'm pointing out now, getting those approvals for those new power stations would be a matter that would rest with the states.
उप प्रधानमंत्री माइकल मैकॉर्मन का कहना है कि देश के लिए ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न मिश्रण की आवश्यकता है.
The energy needs of Australia need to come from a diverse and mixed range of sources. Coal provides jobs for tens of thousands of Australians. It provides tens of billions of dollars for our export industries, and it provides 2/3 of our energy needs. So coal is going to be a very important part of our energy mix going forward, and that's just a fact.
SBS News के लिए पाब्लो विनल्स और जूलिया कार की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया SBS हिंदी के लिए अनीता परार ने.